प्रभु यीशु की सेवकाई की जो मुख्य विशेषता थी वो थी भीड़, बड़ी भीड़ और बहुत बड़ी भीड़ को आकर्षित करना। बाइबल में उन्हें अत्यधिक जनसमूह कहा गया है। एक बार यीशु ने प्रचार किया और यह कहा जाता है कि उसके बाद उन्हें 5,000 पुरुषों को खिलाना था। अब ये नहीं बताया गया कि उसने उसमें कितनी स्त्रियां और बच्चे थे, लेकिन मेरा अनुमान है कि जहां 5,000 पुरुष थे वहां संभवत 5,000 स्त्रियां और 5,000 बच्चे भी हो गए, इसलिए यह संभव था उस समय वहां 15,000 लोग थे। मत्ती 4 अध्याय के 25 पद में लिखा है, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चलती थी जहां कहीं भी यीशु जाते थे। मैंने जब बाइबल पढ़ी तो पता चला प्रभु यीशु की सेवा में चुंबकीय गुण था जो लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करता था। अविश्वासी प्रभु यीशु को सुनने व उसकी सेवा कार्य को देखने आते थे। जहां कहीं वह जाता था एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जाती थी। मुझे विश्वास हो गया है कि यीशु मसीह के समान की गई सेवकाएं आज भी भीड़ को आकर्षित करती है। मुझे विश्वास है कि अपनी कलीसिया उन्नति कर सकती है और आपकी कलीसिया में भीड़ हो सकती है अगर आप वो करें जो यीशु ने किया। आपकी कलीसिया में भीड़ को आकर्षित करने के लिए आपको अपने हठ विश्वास से समझौता कर या चमकदार संदेश की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से एक गिरजाघर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु आपको यीशु की तरह नेतृत्व करना है। यीशु ने यह कैसे किया? यीशु ने लोगों की भीड़ का नेतृत्व कैसे किया? उसने 3 बातें की। पहली, उसने लोगों को प्यार किया। मत्ती 9 अध्याय के 36 पद में बाइबल हमें बताती है, जब उसने भीड़ को देखा उसे उन पर तरस आया क्योंकि वे पीड़ित और असहाय थे जिस तरह बिना चरवाहे की भेड़े। यीशु ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि उसने उनसे प्रेम किया और जो कलीसिया प्रेम करती है वह लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन वह यह केवल एक बात है। दूसरी बात जो यीशु ने की वो थी लोगों की आवश्यकताओं को पूरी करना। प्रथम चरण में हमने बात की थी कि किस तरह यीशु लोगों से बातचीत करते थे। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आवश्यकताओं को पूरा करने में वो बहुत व्यवहारिक थे। जब लोग बीमार होते थे तो वे उन्हें चंगाई देते थे। जब लोग खेदित होते थे तो वो उनकी सहायता करते थे। जब भी किसी के जीवन में कोई आवश्यकता होती थी तो उनकी आवश्यकताएं पूरी करते थे। एक कलीसिया अपने समुदाय, गांव, शहर व नगर की आवश्यकताएं पूरी करती है, वो यीशु के लिए लोगों तक पहुंच रही है। तीसरी बात जो यीशु ने की वो यह, उसके लोगों को रोचक एवं व्यावहारिक तरीके से सिखाया। मरकुस 12 अध्याय के 37 पद में बाइबल बताती है, विशाल जनसमूह यीशु को आनंद से सुनता था। अब मैं इन 3 बातों पर विश्वास करता हूँ, लोगों को प्रेम करना, उनकी आवश्यकताएं पूरी करना और उन्हें रोचक एवं व्यावहारिक तरीके से सिखाना। ये सभी बातें लोगों की भीड़ को आपकी कलीसिया की ओर आकर्षित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस तरह कलीसिया संपन्न एवं उन्नत होगी जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा कि मैंने कहा, यीशु की सेवकाएं विशाल जनसमूह को आकर्षित करती थी और बाइबल कहती है कि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, वरन वो चाहता है सभी उसके पास पश्चाताप के लिए आए। इसलिए हम बढ़ रहे हैं एक कलीसिया के रूप में, इसलिए नहीं कि हमें एक बड़ी कलीसिया चाहिए। यह सही प्रेरणा नहीं है कि हम बढ़े, क्योंकि लोगों को प्रभु की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जिसे यीशु की आवश्यकता है उसे जानने की आवश्यकता है और आवश्यकताएं कलीसिया की अभिन्न अंग होनी चाहिए। जहां तक एक व्यक्ति का सवाल है जो आपके गांव, शहर या नगर में रहता है और यीशु को नहीं जानता, आपकी कलीसिया बढ़ रही है तो परमेश्वर की यह सबसे बड़ी आज्ञा है कि हम सभी लोगों तक सुसमाचार पहुंचाएं। बिना नए लोगों के शामिल हुए कोई कलीसिया उन्नति नहीं कर सकती। प्रश्न यह है, कैसे लोग आपकी कलीसिया में आए, कैसे आप जनसमूह को आकर्षित करें? मैं आपसे कुछ व्यवहारिक बातें कहना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले हम वह करें, मैं आराधना के विषय कुछ सच्चाइयां बताना चाहूंगा, क्योंकि इस चरण में हम जिन बातों पर चर्चा कर रहे हैं उनका यही उद्देश्य है। मैं कैसे आराधना करूं और कैसे मैं एक आराधना सभा आयोजित करूं जो प्रचार किए हो और जिससे लोग यीशु के पास आए। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको 12 मूल सिद्धांत बताता हूं। पहला, केवल विश्वासी परमेश्वर की सच्ची आराधना कर सकते हैं। आराधना विश्वासी द्वारा परमेश्वर के लिए, आराधना का केंद्र बिंदु परमेश्वर हो, मनुष्य नहीं। मैं आपको आराधना की परिभाषा बताता हूं। आराधना परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना है, जिसके लिए जो उसने किया और जो कहा। अब अविश्वासी आसानी से यह नहीं कर सकता। उन लोगों के लिए यह असंभव है जिनके हृदय में मसीह नहीं और नहीं जिनके जीवन मसीह की आराधना के लिए समर्पित है। इसलिए केवल विश्वासी ही उसकी आराधना कर सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की आराधना करने के लिए भवन की आवश्यकता नहीं है। प्रेरित 17:24 में लिखा है, परमेश्वर जिसने संसार की हर एक वस्तु को बनाया कि वह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, वह हाथ के बनाए मंदिरों में निवास नहीं करता। यही वह कारण है जिसने मसीहत को अन्य धर्मों से अलग कर रखा है। अधिकांश धर्म कहते हैं परमेश्वर की आराधना के लिए मंदिरों में जाओ, परंतु यीशु ने कहा तुम्हारा शरीर मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है, इसलिए तुम्हें परमेश्वर की आराधना के लिए भवन की आवश्यकता नहीं है। सैडलबैक चर्च, जिसका मैं पादरी हूँ, हमारी संख्या 10,000 तक से अधिक लोगों के साथ आराधना करने तक बढ़ती गई इसके पहले कि हम भवन निर्माण करते। तीसरी बात, आराधना का कोई सही तरीका या विधि नहीं है। यीशु ने आराधना के लिए दो विशुद्ध आवश्यकताएं बताई है। यूहन्ना 4:24 में वह कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है जो उसकी आराधना करे वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई, यही आराधना की दो मुख्य आवश्यकता है जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। यह आत्मा से होनी चाहिए और सच्चाई से होनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? आत्मा का अर्थ है आराधना पूरे हृदय से होनी चाहिए, ये केवल एक निर्जीव धार्मिक कृत्य न हो और न ही सूखे शब्द। ये केवल कहे गए शब्द न हो, वरन हृदय के लिए वास्तविक अर्थ इसमें हो। मुझे आपकी आत्मा के साथ पूरी खराई से आराधना करनी चाहिए और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ हमारी आराधना परमेश्वर के वचन पर आधारित होनी चाहिए। जब हम बाइबल पर आधारित न होकर अपनी परंपरा और अनुभव पर आधारित आराधना विकसित करते हैं, या फिर जो हम करना पसंद करते हैं उस पर आधारित आराधना करते हैं, तो वह सच्ची आराधना केवल परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर आधारित होती है। इसलिए जब भी हम किसी भी विधि से आराधना करें, अपने आप से पूछे क्या यह बाइबल पर आधारित है। अगर यह बाइबल पर आधारित नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम वह करना नहीं चाहते, क्योंकि यह सच्ची आराधना नहीं है। अब एक बार जब अपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का निश्चय कर लिया है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर बहुत स्वतंत्रता देता है जैसे हम कैसे आराधना करें। यह बहुत जोर से हो सकती है, बहुत शांत भी हो सकती है, बहुत भावनात्मक भी हो सकती है और भावना रहित भी। हर रविवार पूरे विश्व में हजारों लोग यीशु की अलग अलग विधियों से आराधना करते हैं। जिस विधि से अफ्रीका में उसकी आराधना की जाती है, उससे अलग विधि से यूरोप में की जाती है। जिस विधि से उसकी उपासना एशिया में की जाती है, उससे भिन्न विधि दक्षिण अमरीका, ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी अमरीका या दूसरी जगहों में आराधना की जाती है। अधिकांश वाद विवाद आराधना की विधियों को लेकर है, जो कि वास्तव में व्यक्तिगत प्राथमिकता का विषय है। यह सही और गलत का विषय नहीं है। यह मजेदार बात है कि हर एक कलीसिया जिस विधि से आराधना करती है वह सोचती है वही विधि उचित है, परंतु बाइबल कहती है जब तक वह आत्मा और सच्चाई से की जाती है वो ठीक है। अब मैं आपको चौथा सिद्धांत बताता हूँ। चौथा, अविश्वासी आराधना नहीं कर सकते, लेकिन वे विश्वासी की आराधना को देख सकते हैं, और यह महत्वपूर्ण तथ्य है। जब एक अविश्वासी परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, तो अविश्वासियों को अपनी आराधना सभा में आमंत्रित करना आश्चर्य की बात है। हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि वे उस खुशी को देख सकते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। वो देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की हमारे लिए क्या उपयोगिता अर्थात मूल्य है, जिसने हमारे जीवन को बदल दिया है। वो देखना चाहते हैं कि कैसे हमारी परमेश्वर के वचन के प्रति प्रक्रिया है, कैसे हम उसका आदर व सम्मान करते हैं। वह जीवन की मूल समस्याओं का उत्तर देती है, और वे ध्यान रख सकते हैं कि आराधना किस तरह से हमें उत्साहित, दृढ़ और परिवर्तित कर सकती है। मैं जो कह रहा हूँ वह यह है कि चाहे विश्वास की आराधना हो, वो आराधना एक गवाही भी हो सकती है और लोगों को मसीह के पास ला सकती है। पांचवा सिद्धांत है, आराधना अविश्वासियों के लिए एक शक्तिशाली गवाही है। मगर यहाँ एक शर्त है, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाए और संदेश समझने के योग्य हो। संदेश समझने के योग्य हो, यही दो बातें हैं जो आराधना सभा को अविश्वासियों तक पहुंचने में प्रभावी बना सकती है। यदि आप प्रेरितों के दूसरे अध्याय को देखें, जहां पर पेंटेकोस्ट के दिन का वर्णन किया गया है, हम पाते हैं चेलों की आराधना सभा में परमेश्वर की उपस्थिति बहुतायत से थी, जिसने सारे शहर को अपनी ओर उन्मुख कर लिया। वास्तव में हम जानते हैं एक विशाल समूह उस प्रार्थना सभा में आया था, क्योंकि ये लिखा वहाँ उस दिन 3,000 लोग बचाए गए। प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय के 6 पद में लिखा है, एक विशाल जनसमूह एक साथ आया। वे एक साथ क्यों आए? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ थी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति महसूस किए जाने से अधिक परमेश्वर का संदेश समझने योग्य था और मैं विश्वास करता हूँ आराधना के लिए दोनों तत्व का होना आवश्यक है। विशुद्ध आराधना में संदेश समझने योग्य होना चाहिए। आपको याद है उस कहानी में कहा गया कि हर एक व्यक्ति जो अलग अलग देशों से आए थे उन्होंने परमेश्वर का वचन अपनी भाषा में सुना। हो सकता है आपकी आराधना में आश्चर्यकर्म न हुआ हो, पर सिद्धांत अभी भी वही लागू होते हैं कि वचन समझने योग्य होना चाहिए। हम केवल धार्मिक प्रभावों को प्रयोग करके यह आशा न करें कि लोग परमेश्वर का वचन समझे, क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की जाए, उसकी सामर्थ्य का प्रदर्शन हो और जब परमेश्वर का वचन समझाया जाए, तभी प्रचार की पूर्णतया तैयारी होती है। छठा, परमेश्वर चाहता है जब अविश्वासी हमारी आराधना सभा में उपस्थित हो तो हम उनके भय, आवश्यकताएं और प्रश्नों के प्रति संवेदनशील होने चाहिए। यही सिद्धांत हम पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में पौलुस कलीसिया को लिखता है, वह कहता है, अगर पूरी कलीसिया एकत्र हो और हरेक अन्य भाषा में बोले और कुछ न समझ पाए या कुछ अविश्वासी अंदर आए, क्या वो ये नहीं कहेंगे आप अपने होश में नहीं है। पौलुस एक खंड में कहता है, सार्वजनिक आराधनाओं में अन्य भाषाओं का वरदान सीमित होना था। कारण यह था, एक अविश्वासी जो समझ से बाहर था। पौलुस यह नहीं कहता अन्य भाषाएं मूर्खता है, नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। उसका कहना है, जब अविश्वासी आपकी आराधना में हो तो हमें अपनी आराधना के तरीकों को उसी तरह बनाना चाहिए जिससे वे लोग मसीह के पास आ सकें। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जब मैं अपनी पत्नी व बच्चों के साथ एक भोजन करता हूं, वह भोजन बनाती है, हो सकता है वह एक बर्तन भर फलियां बना रही है, हम बैठते हैं और भोजन एक साथ खाते हैं, पर जब कभी हम मेहमानों को खाने पर आमंत्रित करते हैं, खाने में थोड़ा सा ही अंतर होता है। यह उसी तरह का भोजन हो, आज भी खाने के लिए कलियां ही बनी है, लेकिन तब हम उसी खाने को बड़े नम्रता के साथ अलग तरीके से पेश करते हैं और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आज हमारे बीच मेहमान आए हुए हैं। ठीक उसी तरह अविश्वासियों के साथ आराधना कर रहे हो सकता है परमेश्वर का वचन वही हो जो पहले देते व सुनते थे। हमें परमेश्वर का वचन बदलना भी नहीं है, क्योंकि यहूदा की पत्री में लिखा यह सच्चाई है जो एक बार भक्तों के लिए प्रकट की गई, इसलिए हमें उसे बदलना नहीं है। ना ना, हमें संदेश को, वचन को कतई बदलना नहीं है, पर हमें वचन के प्रचार का तरीका बदलना है। वचन के प्रचार का तरीका बदलना है, हमें अलग तरह के शब्दों का प्रयोग करना है जो सरल और आरामदायक हो और वे इसे समझ सके कि संदेश क्या है। हम पाखंडी न हो बल्कि नम्र हो और अपने मेहमानों के प्रति सम्मान प्रकट कर सके। सातवीं बात, सातवां सिद्धांत है, हमारी आराधना सभा सिर्फ बाहरी न हो वरन आगंतुकों के लिए आरामदायक भी होनी चाहिए। अविश्वासियों तक पहुंचने के लिए संदेश नहीं बदलना है, संदेश से हमें समझौता नहीं करना है, बस ये समझने योग्य होना चाहिए। कभी कभी हम ईमानदारी से जब वचन बांटते हैं वो असुविधापूर्ण होता है, जबकि यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। यह कोई साधारण बयान नहीं है। यीशु ने कहा, तुम अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लो। हम प्रभु यीशु के बयान को बदलने के लिए नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जब एक अविश्वासी आपकी कलीसिया में आता है तो वह अपने आप को सहन महसूस करे। जिस तरह से हम उसका अभिवादन करते हैं और जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपनी प्रार्थनाओं व वचनों को पढ़ने में, वह उनको समझ सके। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वासी और अविश्वासी की आवश्यकताओं में बहुत अंतर होता है, पर कुछ क्षणों में वो एक सी भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए आवश्यक है कि वह परिवार कैसे मजबूत बने, जीवन की समस्याओं से कैसे सामना किया जाए, चिंताओं से कैसे निपटा जाए, अपराध बोझ और डर से कैसे सामना किया जाए। अविश्वासी और विश्वासी दोनों को जानना है कि परमेश्वर क्या है और वो क्या पसंद करता है। दोनों को जानना है कि परमेश्वर की उनके जीवन के लिए क्या योजना है। इसलिए जब आप आराधना का प्रारूप तैयार करें तो ऐसे विषयों को ले जो विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए आवश्यक हो, और जब केवल मसीहियों के लिए आराधना सभा करें तो अलग तरह के विषयों को चुने जो उन्हीं पर लागू होते हो। जब एक बार मनुष्य बचाए जाते हैं तो मसीह उन्हें नहीं रोक पाते, उनकी भी वही आवश्यकताएं होती है जो दूसरों की, और हमें उन विषयों को फिर तय करने की आवश्यकता होती है। नौवीं बात, यह सबसे अच्छा होगा यदि आप अपनी सभा उनके उद्देश्यों के अनुसार निर्धारित करें। इस समय हम बात कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर के 5 उद्देश्यों पर हम अपनी कलीसिया का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने प्रचार पर बातचीत की और अब आराधना के विषय पर बातचीत कर रहे हैं, यह प्रभावी और बहुत अधिक प्रभावी हो सकती है यदि हम आराधना को विशेष उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। एक सभा गैर मसीहियों को प्रभु के लिए जीतने के लिए तैयार करें, एक सभा विश्वासियों को उनके विश्वास में बढ़ने के लिए सहायक हो। ये 2 अलग उद्देश्य और अलग अलग सभाएं हैं। कई बार हमारी कलीसिया इन दोनों को एक साथ करने की कोशिश करती है, जैसे कि विश्वास में मजबूत विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए। हम दोनों तक एक साथ पहुंचना चाहते हैं, मगर अब मिश्रित परिणाम भी सामने आएंगे। प्रभावशाली आराधना सभा बनाने के लिए उसे विशिष्ट बनाना होगा। ये सब मैंने एक मसीही से सीखा। यह सच है, मेरे पिता एक पादरी थे और जब मैं बड़ा हो रहा था मुझे नहीं मालूम पड़ता था कि कौन सा सप्ताह अच्छा होगा मेरे गैर मसीही दोस्तों को कलीसिया में लाने के लिए। कभी मैं अपने गैर मसीही मित्रों को लाता था तो मेरे पिता मसीह परिपक्वता पर संदेश देते और मेरे गैर मसीही दोस्त समझ नहीं पाते थे, और मेरे पिता मिसाल के तौर पर दान देने के बारे में या उपवास के बारे में या प्रार्थना या बाइबल अध्ययन के बारे में प्रचार करते, और मेरे गैर मसीह मित्र कहते ये समझ में नहीं आ रहा है। और फिर जब मैं गैर मसीह दोस्त नहीं लाता था उस दिन मेरे पिता सुसमाचार नया जन्म या कैसे मसीह बना जाए उस पर संदेश देते थे, तो मुझे पता ही नहीं रहता कि किस सप्ताह मेरे गैर मसीह मित्रों को लाया जाए। आप देखेंगे कि आपकी कलीसिया में ऐसे कई लोग हैं जो खुशी खुशी अपने गैर मसीह मित्रों को कलीसिया में लाते हैं। अगर उन्हें मालूम होता कि एक खास सभा अविश्वासियों को मसीह के पास लाने के लिए आयोजित की गई है वो लाते। अगर उन्हें मालूम होता कि गाने भी उस तरह के होंगे जो गैर मसीह की समझ में आते, और संदेश भी नए जन्म की योजना का संदेश जो सरल रूप से बताया जाए, और वे शर्मिंदा नहीं होंगे बल्कि अच्छा महसूस करेंगे और समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है। कई कलीसिया भी जहां उद्धार के संदेश दिए जाते हैं वहां भी कई बार सभा भी विश्वासियों को ध्यान में रखकर की जाती है, और प्रार्थना गीत और कई बातें चर्चा भी सभी विश्वासियों द्वारा विश्वासियों के लिए किया जाता है। और जब आप अंत में उद्धार के संदेश के पास आते हैं तो गैर मसीह की समझ में नहीं आता क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं है। जब मैंने सैडलबैक वैली कम्युनिटी कलीसिया की शुरुआत की, जिसका मैं पादरी हूं, मैंने विश्वासियों का एक छोटा समूह एकत्र किया। मैंने कहा, आप कब चाहते हैं कि अविश्वासियों के लिए सभा आयोजित की जाए? अमेरिका वालों ने कहा, रविवार की सुबह। हो सकता है वो आपके लिए भिन्न हो, उस स्थान के लिए भिन्न हो जहां आप रहते हैं, लेकिन अमेरिका में यह रविवार की सुबह होती है। मैंने कहा, आप कब सोचते हैं कि अविश्वासी एक सभा में सबसे अधिक उपस्थित रहना पसंद करेंगे? उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति के अनुसार रविवार की सुबह। एक बार फिर ये आपसे भिन्न हो सकता है, इसलिए मैंने कहा, ठीक है, हम सप्ताह में 2 सभाओं का आयोजन करेंगे, एक बढ़ते हुए विश्वासी के लिए, दूसरी अविश्वासियों तक पहुंचने के लिए। और उन्होंने कहा, बहुत अच्छा, इसलिए हमारी कलीसिया में सप्ताहांत सभा, रविवारीय सभा और शनिवार की सभा, हम 4 सभाएं रखते हैं ताकि लोग अपने गैर मसीह और अविश्वासी मित्रों को लेकर आए, और पूरी सभा इस तरह तैयार की जाती है जिससे वे लोग जो लोग मसीह को नहीं जानते हैं वो भी सुसमाचार को जाने। इसके बाद बुधवार की रात्रि सभा विशेष रूप से विश्वासी लोगों के लिए तैयार की जाती है जिससे मसीही लोग बढ़े और परमेश्वर के उन गहरे भेदों को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने और परिपक्व हो। इस तरह हमने पाया कि अलग अलग सभाएं बांट देने से दोनों समूहों पर प्रभाव पड़ेगा, विश्वासी भी बढ़ेंगे और गैर मसीही भी मसीह के पास आएंगे। इसलिए मैं सलाह दूंगा, आप अपनी आराधना सभा को विशिष्ट बनाएं। दसवीं बात, एक सभा जो प्रचार किए है, इसका अर्थ है वह व्यक्तिगत प्रचार का ही एक जोड़ है, न कि उसकी जगह है। प्रचार की सभा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अपना विश्वास दूसरों के साथ न बांटे, हम एक एक करके लोगों से न मिले। नहीं नहीं नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। लेकिन हम पाते हैं कि लोग सामूहिक रूप से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना अधिक आसान समझते हैं, जबकि दूसरे लोग भी उनको सहयोग दे रहे हो। इस तरह हम पाते हैं लोग तेजी से प्रभु यीशु के पास तब आते हैं जब पहले कोई उनके साथ प्रभु का वचन बांटे, चाहे व्यक्तिगत रूप से या एक एक करके, और उनके साथ अपनी गवाही बांटे कि किस तरह उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और उसी समय वह उन्हें उस सभा में लेकर आए जो विशेष रूप से अविश्वासियों के लिए तैयार की गई है। तब क्या होगा, क्या घटित होगा? जब मैं अपना विश्वास अविश्वासियों के साथ अपने काम पर समुदाय के बाजार में बांटता हूँ, और या अपना विश्वास मैं अपने पड़ोसी से बांटूंगा, तब मैं कहूंगा, ओ क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ कलीसिया में आओ। तब हम उस व्यक्ति के लिए विशिष्ट सभाओं को आयोजित करते हैं। हो सकता है जब वो दूसरे लोग को देखें, दर्जनों या सैकड़ों को आपकी कलीसिया में, वे कहेंगे ये केवल एक व्यक्ति के विश्वास करने की नहीं, वरन दूसरे लोग भी है जो ये विश्वास करते हैं। बहुत सारे अध्ययन से मैंने ये जाना है कि लोगों जो सामूहिक शक्ति देखते हैं उस पर विश्वास भी करते हैं और मसीह के लिए अपना निर्णय तेजी से लेते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा सिद्धांत बताना चाहता हूँ। एक विश्वासी और प्रचार की सभा के लिए कोई मानक पैमाना नहीं तैयार किया गया है। जो तैयारी आपने की है वह आपकी कलीसिया के लिए सबसे अच्छी है। मैं नहीं कह सकता आप अपनी सभा में यह क्या कर रहे हैं। मैं आपको कुछ सिद्धांत बता रहा हूँ, पर उसे आपको अपनी संस्कृति, समूहों और लोगों तक पहुँचने के तरीके और अपने उद्देश्यों के अनुसार स्थापित करना होगा। वह बातें जो हस्तांतरित नहीं की जा सकती और जो एक प्रभावी प्रचार की सेवा में होना जरूरी है, वो तीन ही बातें हैं जिन्हें मैं इस चरण के शुरुआत में ही बताया था। पहली, अपनी कलीसिया में लोगों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करें। दूसरी बात, लोगों को रोचक और समझने योग्य रूप से परमेश्वर का वचन साधारण भाषा में दे दें। और तीसरी बात, आप कहीं न कहीं बाइबल को उनकी व्यक्तिगत जीवन की किसी आवश्यकता से जोड़ दें। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा कि कैसे प्रचार की आराधना सभा स्थापित की जाए जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। सबसे पहले अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभा की योजना बनाए। याद रहे, हम पहले ही चरण में कह चुके हैं, हमें ध्यान रखना है हम किसका शिकार कर रहे हैं। जिन लोगों तक आप पहुंचना चाह रहे हैं उनके बारे में जानिए कि वो किस तरह के हैं। मेरी कलीसिया में हर सप्ताह हम योजना बनाते हैं संदेश के बारे में, गीत संगीत के बारे में, और जबकि सभा के हर भाग के बारे में हम योजना बनाते तो कहते हैं किस तरह के लोग इस सभा में उपस्थित होंगे, उनकी क्या आवश्यकता है। अब वास्तव में क्या अंतर रह गया, क्या व्यक्तिगत जीवन परिवर्तन की शक्ति? एक चीज है जो हर कलीसिया हर संस्कृति में संभव है, वो है व्यक्तिगत गवाहियां। जब लोग दूसरे का जीवन परिवर्तित होते हुए देखते हैं तो वे भी परिवर्तित हो जाते हैं। हर सप्ताह हमारी कलीसिया में अविश्वासियों के लिए आराधना सभा होती है जिसमें कम से कम एक कहानी और एक व्यक्ति की सच्ची गवाही, जिससे ये होता कि कैसे उसने मसीह को पाया, अवश्य होती है। हम उनसे कहते हैं अपनी गवाही लिखो और उस पर विचार करो और फिर सभा में अपनी गवाही दो। जब पादरी प्रचार करता है और सिखाता है, कई बार अविश्वासी उस व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं, ओह ये इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि उसे इसकी तनख्वाह मिलती है, या ये कहते हैं ये पेशेवर व्यक्ति है, या ये स्वयं पवित्र है इसलिए चाहता है सब इसके जैसा करें। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई आपकी कलीसिया का व्यक्ति अपनी गवाही देता है कि कैसे उसके जीवन में यीशु मसीह ने बदलाव लाया, तो वे कहते हैं ओह ये व्यक्ति मेरी ही तरह है, वह भी पवित्र नहीं है, वह कोई पादरी या पुजारी नहीं है, नहीं चर्च का अगुवा, वे केवल साधारण आदमी है, और ये गहरा शक्तिशाली प्रभाव छोड़ता है। इसलिए अपनी सभा को अविश्वासियों के लिए तैयार करते समय गवाही, सच्ची कहानी पर अवश्य विचार करें। दूसरी बात, दूसरी सलाह, ऐसा वातावरण तैयार कीजिए जब लोग आराधना करने के लिए आना पसंद करें। वातावरण से आपका क्या मतलब है? मेरा अर्थ है सभा का व्यवहार गर्मजोश और आमंत्रण से भरपूर होना चाहिए। अगर आपकी सभा में आमंत्रण नहीं होगा तब आप अवसर को खो रहे हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है जो अविश्वासी लोग आपकी कलीसिया में आना चाहते हैं और वापस जाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे यीशु ने प्रचार किया और लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए, पहला आशा उत्पन्न कीजिए जो कि आप में उत्साह भर देगी। जब आप सभा शुरू करेंगे और कहेंगे, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ है और आज का यह दिन उसने बनाया है, आइए हम आनंदित और मगन हो, आपके लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। यह आशाओं का एक महान स्थान होने जा रहा है। यह क्या है? क्या विश्वास महान स्थान होने जा रहा है? यह क्या है? विश्वास हमारे भावों को उत्पन्न करता है जो हम महसूस करते हैं। अब किन कारणों से लोग सभा में आना चाहेंगे जहां वो सोचते हैं कुछ होने जा रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है? इस तरह के वातावरण का क्या कारण है? हर सप्ताह के लिए प्रार्थना करना इसकी कुंजी है। हर व्यक्ति अपने मित्रों को सभा में लेकर आए, यह आशाओं को जागृत करता है, क्योंकि हम जानते हैं अविश्वासी इस सभा में आने वाले हैं और परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं। जिस तरह का संगीत आपने चुना है, यदि वो लय में है, वह सकारात्मक हो और एक जश्न के रूप में हो, तो लोग उस जश्न में भागीदार होना पसंद करेंगे। जब आपकी कलीसिया बढ़ेगी, बहुत से लोग उसमें आएंगे, तो जबरदस्त खिंचाव व मजबूत चुंबकीय शक्ति पैदा होगी और लोग कहेंगे, ओ यहाँ जरूर कुछ होने जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ सारे लोग हैं। और तब सबसे महत्वपूर्ण बात है नेतृत्व करने वाले का विश्वास। संगठन जिसने योजना तैयार की सभा के संचालन की, वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन बांटने और सिखाने जा रहे हैं, वो व्यक्ति जो संगीत का नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो लोग जो सभा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अर्थात जो भी लोग इस पूरे कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अब कुछ विशेष कार्य करने जा रहा है। हर सप्ताह आराधना सभा के पूर्व मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, परमेश्वर मैं जानता हूँ आज आप कुछ रोमांचक कार्य करने जा रहे हैं, इसलिए मैं पहले से ही आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर को पहले से ही धन्यवाद देना विश्वास है। अगर आप आश्चर्यकर्म होने के बाद धन्यवाद देते हैं तो वो धन्यवाद नहीं, आभार है। आप केवल आभारी है। बाइबल कहती है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। दूसरी तरफ बाइबल ये भी कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए आप चाहे प्रार्थना कर रहे हो या गा रहे हो या आराधना कर रहे हो, अगर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर आज की सभा में कुछ करेगा, तो बाइबल कहती है जहां विश्वास नहीं वहां पाप है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। इसलिए जब तक हम परमेश्वर से हम कुछ करने की आशा नहीं करते, उसकी उपस्थिति व सामर्थ्य को महसूस नहीं करते जो लोगों के बदलते जीवन में दिखाई दे, ऐसी आराधना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। इसलिए प्रार्थना एवं विश्वास के साथ आशा को उत्पन्न करें। दूसरा तरीका आपको अपनी सभा में जो अपनाना है वो है समारोह या पर्व का बात कराना। बाइबल कहती है भजन संहिता में, मैं खुश हुआ जब वे मुझे कहने लगे कि आओ परमेश्वर के घर चलते हैं, मैं दुखी पागल व उकताया नहीं वरन खुश हुआ। भजन संहिता 100 अध्याय में 2 पद में लिखा है, परमेश्वर की आराधना खुशी से आनंद के गीतों के साथ गाओ। आप जानते हैं कई सभाएं पर्व के समान न होकर शोक सभाओं के समान होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अत्याचार हो रहा हो और सब कुछ बड़ा शांत व गंभीर होता है। आज भी लोग वहां जाना पसंद करते हैं जहां जीवन है, खुशी है व आनंद है। यह एक आकर्षण करने वाला वातावरण है। नए नए गीत गाकर आप पर्व के बोध को उत्पन्न कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि आप कलीसिया के लोगों को नए गीत लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाओ। समस्या यह है कि कई कलीसियाएं वही पुराने गीत गाती रहती है। होता यह है कि जब 40-50-60 बार गीत गा लेते हैं तो उसके अर्थ को भूल जाते हैं। जब लोग नया गीत गाते हैं, ये कहा गया है अब परमेश्वर हमारे बीच में कुछ करने जा रहा है, इसलिए कुछ नए गीत, नई धुन व नई संगीत बजाएं। परमेश्वर हर तरह का संगीत प्रयोग कर सकता है। परमेश्वर हमारे बीच कुछ करने जा रहा है, सिर्फ हमारे पिता का विश्वास नहीं, हमारे बाप दादा का विश्वास नहीं, लेकिन नई खुशी, नई संगीत, नए गीत बनाए। आपको किसी दूसरी संस्कृति का संगीत लेने की आवश्यकता नहीं है, अपनी ही संस्कृति का संगीत व धुन लीजिए और परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। पर जहां तक शब्दों का सवाल है, वह आत्मा और सच्चाई में होना चाहिए, फिर आप प्रोत्साहन का वातावरण उत्पन्न करें। यह दूसरा तरीका अच्छी सभा बनाने का है। आप जानते हैं, संसार में बहुत से बुरे समाचार हैं। आखिरी चीज क्या है? क्या बुरा समाचार जिसे सुनने लोग कलीसिया में आते हैं? क्या उन्हें खुशी का समाचार सुनने की आवश्यकता नहीं है? जी हाँ, इसलिए सुसमाचार है। सुसमाचार का अर्थ है खुशी का समाचार। यह पृथ्वी की सबसे बड़ी खबर है। कभी कभी हम इनको बुरे समाचार की तरह बांटते हैं। हमें मुस्कुराना, आनंदित होना और खुश होना चाहिए कि हमारे पाप क्षमा किए गए, हमारा अतीत भुला दिया गया, अब नए जीवन के लिए एक उद्देश्य है, हमारे पास अनंत काल का जीवन है, हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। इसलिए इसे हम उत्साह और उमंग के साथ सुनाने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग अपने जीवन में कठिन समय देखते हैं, एक बुरा समय देखते हैं और हर सप्ताह को निराशा में महसूस करते हैं। पर जब आपकी कलीसिया में प्रोत्साहन या उत्साह का वातावरण पैदा होगा, तब लोगों को हर सप्ताह एक उत्साह और प्रेरणा मिलेगी। तब आप पाएंगे कि कई अविश्वासी केवल उत्साह प्राप्त करने आपकी कलीसिया में आ रहे हैं, और जब वे आते हैं, आप प्रभु यीशु का सुसमाचार बांट सकते हैं। दूसरी चीज, आप एक पारिवारिक वातावरण उत्पन्न करें। लोग अपने से संबंधित सभा को महसूस करना चाहते हैं, वे अपने को अनदेखा करना नहीं चाहते कि वह अजनबी है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, इससे पहले कि लोग सभा में आए, कुछ लोग हो जो दूसरे लोगों का स्वागत करें, मुस्कुराए, उनसे मिले, उनका अभिवादन करें, उनसे हाथ मिलाए और कहें, हमें खुशी है आप हमारी कलीसिया में आए, आपका स्वागत है। और आप नए आने वालों के लिए एक विशेष स्थान भी बना सकते हैं जहां वो आपकी सभा में बैठ सकें, अपने को सहन अनुभव कर सकें। आप उन्हें खड़ा होने, अपना नाम बताने या कुछ कहने के लिए न कहे जिससे वे परेशान हो जाए। सबसे पहला जो भय लोगों को होता है वह सभा में बोलने का होता है, दूसरा भय नए लोगों से मिलने पर होता है। इसलिए उनका परिचय देकर उन्हें भयभीत मत कीजिए, बल्कि उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत कीजिए, सार्वजनिक रूप से नहीं, जिससे वे दूसरे लोगों के सामने परेशान हो। आपको चाहिए एक ऐसी सभा आयोजित करें जहां आप लोगों को भावनात्मक रूप से आराम व पूर्व स्थिति में ला सके और उन्हें उत्साहित कर सके। दूसरी बात, आप एक धार्मिक सभा उत्पन्न करने में सहायता दे सकते हैं। अगर यह संभव हो, कुछ बाइबल पद जिन पर आप प्रचार या सिखाना चाहते हो, उन्हें एक पेपर के टुकड़े पर लिख ले ताकि आप उन्हें पकड़े रहें। बहुत से लोग बाइबल से डरते हैं अगर वो अविश्वासी है। यह उन्हें डरावनी पुस्तक लगती है। पहली बार में उन्हें लगता है ये उन पुस्तकों की तरह नहीं जो उन्होंने अब तक देखी। इसमें हर वाक्य के बाद अंक दिए गए हैं और बहुत से लोग पढ़ते भी नहीं हैं। इसलिए आप क्या कर रहे हैं? पहली बात, अगर संभव हो तो उन बाइबल पदों को कागज पर लिख ले और जब कोई व्यक्ति कलीसिया में आए उसे पकड़वा दे, क्योंकि तब आप कहेंगे, हाँ आजकल हम योहन्ना की पुस्तक से पढ़ रहे हैं। हाँ, तो वे बड़ी असुविधा महसूस करते हैं, लेकिन जब उसके पास वो पद कागज पर होगा तब सब लोग एक साथ उसे पा सकेंगे, यहाँ तक कि गैर मसीही भी, जिन्हें यह भी नहीं पता बाइबल कहां से देखें, पर इससे उन्हें सुविधा होगी। हम गैर मसीहियों को क्यों सुविधा देना चाहते हैं? क्योंकि जब वो सहन हो गए तभी सुसमाचार ज्यादा ध्यान से सुन सकेंगे और सुनना चाहेंगे। बहुत सी बार लोग कलीसिया में डरते हुए आते हैं, क्या मैं कुछ कह पाऊंगा, क्या मुझे पैसा देना होगा, क्या मुझे धार्मिक क्रिया करनी होगी जो मैं नहीं जानता, क्या मैं स्वयं को परेशानी में नहीं डाल दूंगा जब मैं गलत करूंगा। और इसलिए हर चीज जो आप इस सभा में करें जिससे डर कम हो, तुम्हें लगे उनका स्वागत हो रहा है, बाइबल को खोलना आसान हो जाए, इसलिए उसे कागज के टुकड़ों पर लिख दे, गीत के शब्दों को लिख दे ताकि वो समझ सके। इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप और भी दूसरी बातें सोच सकते हैं, इससे उन्हें सहन होने में सहायता मिलेगी। जब वे सहन हो जाएंगे तब वे अच्छी तरह सुनेंगे और यीशु उनके दिल में आ सकेगा। आपको यह करना है कि अपने दिल से लेकर उनके दिलों तक एक पुल का निर्माण करना है और यीशु मसीह को उस पुल से गुजरने दे। दूसरी सलाह जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये, एक प्रचार की आराधना सभा को हमेशा दूसरों को प्रभु यीशु को ग्रहण करने का अवसर देना चाहिए और उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार करना चाहिए। बहुत सी बार हम सुसमाचार का प्रचार तो करते हैं, पर यह केवल इस तरह होता है जैसे हम मछली का शिकार तो कर रहे हो पर जाल पर ध्यान नहीं दे रहे। वे केवल ये कहते हैं, यहाँ सुसमाचार है, अब अपने घर जाओ। क्या आप हमेशा प्रत्येक सभा को केवल अंतिम प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं? आप कह सकते हैं, यदि आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं, तो कागज पर लिखी इस प्रार्थना को अपने दिल से कीजिएगा। और आप वास्तव में ऊंची आवाज से भी प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे वे लोग अपने मनों में भी कर सकें। जब मैंने सैडलबैक चर्च शुरू किया अमेरिका में, तब ये परंपरा थी कि सभा के अंत में लोग कलीसिया के सामने आए और यीशु को ग्रहण करें। यह मेरी परंपरा थी क्योंकि मैंने सोचा था ऐसा करना चाहिए। जब मैंने पहली बार अपनी कलीसिया की सभा ली तो, जो कि एक माध्यमिक पाठशाला में थी, और जैसे ही मैं प्रचार करने वाला था, मैंने योजना बनाई कि लोगों को सामने बुलाऊं जो प्रभु यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने सभा समाप्त की और ऊपर देखा तो मैंने जाना उस भवन में कोई जगह खाली नहीं थी जिससे लोग सामने आ सके। यह एक छोटा सा कक्ष था और उसमें कोई जगह नहीं थी, तो मैंने दूसरा तरीका निकाला जिससे लोग यीशु को ग्रहण कर सके। उन तरीकों में से एक था छोटा कार्ड जो सभी कुर्सियों पर रखा हो, और सभा के अंत में मैं कहूंगा, जो लोग यीशु को अपने दिल में आमंत्रित करना चाहते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, आइए हम सिर झुकाएं। और मैं कहूंगा, आप सब प्रार्थना अपने दिलों में कर सकते हैं, आपको जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं, वह जानता है आप अभी क्या सोच रहे हैं। और अब मैं एक पापी की प्रार्थना करूंगा, प्रिय यीशु मसीह, कृपया मेरे जीवन में आए। फिर मैं थोड़ा रुकूंगा और कहूंगा, क्यों ना आप यह बोले, मैं चाहता हूं कि आप मेरे जीवन के स्वामी और प्रभु बने, मैं आपके नियंत्रण में रहना चाहता हूं, कृपया मेरे पाप क्षमा करें, मुझे अपने परिवार में स्वीकार करें, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, यीशु के नाम से आमीन। और फिर मैं कहूंगा, अगर आपने ये प्रार्थना कर ली है तो मेरी तरफ देखें। तब मैं आराधना सभा में उपस्थित लोगों से कहूंगा, आप जानते हैं, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो आपने अब तक की सब प्रार्थनाओं में से महान प्रार्थना आज की है, और ये एक नए जीवन की शुरुआत है, मसीह जीवन की शुरुआत। एक मसीह होने के नाते आगे बढ़ने में हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ साहित्य जो आपकी सहायता करेगा, और लोग जो आपसे बात करेंगे अगर आप अपने निर्णय के बारे में हमें बताएं। और एक तरीका जो हम अपनी कलीसिया में अपनाते हैं, वो आप भी कोशिश कर सकते हैं, एक छोटा कार्ड जिस पर वे अपना नाम व पता लिख सकते हैं और पीछे लिखा होता है, आज मैंने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया है और ये प्रार्थना की, और उसमें बहुत से निर्णय दिए गए। हमारे पास छोटी पेंसिल है जिससे वे सब खानों को जांच सकते हैं और अंदर फिर भीड़ सकते हैं। जैसे ही वो बाहर जाते हैं, उस कार्ड को दरवाजे पर खड़े किसी व्यक्ति को दे देते हैं या दान की थैली में डाल देते हैं जब कोई दान ले रहा हो। यह एक तरीका है यह खोजने का कि आराधना सभा में कोई यीशु मसीह को स्वीकार करना चाहता है। एक दूसरी बात मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अपनी आराधना सभाओं का पुनः अवलोकन करते रहें। आपकी कलीसिया के अगुए आराधना सभा के बाद या दूसरे दिन एक साथ बैठे और कहे कि अगले रविवार को हम और क्या अच्छा कर सकते हैं ताकि सुसमाचार प्रभावी ढंग से पेश किया जा सके। अगर आप प्रार्थना करेंगे कि वह आपको नए विचार दें, वह देगा, और आप पाएंगे बहुत से लोग मसीह के पास आ रहे हैं।